ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आप सब यहां मंदिर में पिचित्रेविया में भगवती मां दुर्गा की उपासना के लिए पधारे हैं। ये पूजा ये उत्सव जिसमें हम सब लोग इकट्ठे होते हैं प्रेम से बैठते हैं और गुणगान करते हैं भगवान का, ये हमको कहां से प्राप्त हुआ, किसने दिया? ये हम जो कर रहे हैं उत्सव, ये मंदिर बनाए, ये पूजा शुरू की किसने सिखाया? ये शास्त्रों ने सिखाया। तो शास्त्र किसने दिया? शास्त्र वेद व्यास ने दिए। तो पहले ये समझना चाहिए जो कुछ हम कर रहे हैं ये शास्त्रों में है, और शास्त्र कलयुग शुरू होने से पहले भगवान ने अपने शक्ति का अवतार, शक्ति अवेश अवतार, उसमें अपनी शक्ति का प्रवास किया और व्यास देव यहां प्रकट हुए, सत्यवती के पुत्र। उन्होंने एक वेद को चार भाग में बांटा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद। उसने फिर व्यास देव जी ने उपनिषद लिखे जो वेदों को समझाने के लिए कहानियां कथाओं के द्वारा सिद्धांत समझाया। फिर भी देखा कि कलयुग के लोग वेद नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है, तो पुराणों की रचना की। पुराण किसको बोलते हैं? पुराण मतलब पुराना, पुराना का मतलब बहुत पुराने जमाने के राजा महाराजाओं का इतिहास जो भगवान के भक्त थे। तो 17 पुराणों का संकलन किया व्यास देव ने, 17 पुराण बनाए। फिर भी व्यास देव सरस्वती नदी के तट के ऊपर बद्री का आश्रम में चिंता में थे। क्यों चिंता में थे? उस वक्त उनका गुरुदेव नारद पधारे वहां। नारद व्यास देव के गुरु हैं। गुरुदेव को आते देखा, व्यास देव ने प्रणाम किया, आसन दिया और गुरुदेव ने पूछा, व्यास देव आपने वेद का वर्णन किया है, शास्त्र सब लिखे हैं, पुराण लिखे हैं, महाभारत भी लिखी है जिसके अंदर गीता है, फिर भी आप संतुष्ट क्यों नहीं है? तो व्यासदेव कहता है, महाराज गुरुदेव आप ही मेरे अंदर देखो कि क्यों मैं संतुष्ट नहीं हूं। तब व्यासदेव ने, व्यासदेव के अंदर नारद जी देख के कहते हैं, व्यासदेव आपने शास्त्रों के अंदर इतना ज्यादा लोगों को स्वर्ग का वर्णन किया है कि ये पूजा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो लोग सारे स्वर्ग में जाने के लिए पूजा करते हैं, कोई भगवान को पाने के लिए पूजा ही नहीं करता है, सब भोग में फंसे हुए हैं। अब आप एक काम करो व्यासदेव, आप भगवान की महिमा का शास्त्र लिखो, भगवान का गुणगान हो ऐसा शास्त्र लिखो। तब व्यास देव ने समाधि में स्थित होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण किया। तो सारे शास्त्रों को रचने के बाद व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन किया। तो आज उस भागवत महापुराण से हम भगवती मां दुर्गा की महिमा का थोड़ा सा दर्शन करेंगे। शास्त्र से बोलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने मन से बोलने की कोई महत्व नहीं है, शास्त्र क्या कहता है। भगवान भी खड़े हो और शास्त्र भी हो तो भगवान कहते हैं शास्त्र को मानो मुझसे ज्यादा क्यों। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी को श्राद्ध दान कर रहे थे, पिंड श्राद्ध दान कर रहे थे। राम जी श्राद्ध दान करें तो दशरथ जी का हाथ बाहर निकल आया, मेरे को दो बेटा। पंडित जी ने कहा नहीं, हे भगवान राम जी, आप साक्षात भगवान है, आपके पिताजी का तो हाथ निकल आया, सबके पिताजी का हाथ तो निकलेगा नहीं, फिर लोग कैसे पूजा करेंगे। शास्त्र कहता है कि पिंड आपको कुछ घास के ऊपर डालना है तो घास के ऊपर डालिए। तो ये शास्त्र की मर्यादा भगवान भी मानते हैं। तो एक छोटी कथा बताते हैं शास्त्र की मर्यादा भगवान कैसे मानते हैं, और फिर हम चार पांच श्लोक श्रीमद् भागवत से देवी महिमा के पढ़ेंगे और आप इसको देखें शास्त्र में कैसे प्रमाणित है। तो शास्त्र का प्रमाण कैसे होता है, ये एक आपके यहाँ चित्र, यहाँ भगवती माँ दुर्गा का है, दुर्गा माँ गिरजा भी कहते हैं, गिरजा इसलिए कहते हैं, गिरी कहते हैं पर्वत को, जा कहते हैं जहां से जन्म लिया। तो गिरिजा ने कहां से जन्म लिया, मेनका और हिमालय इनकी बेटी है गिरजा, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए कहां से प्रकट हुई। इससे पहले दक्ष की बेटी थी ये सती, और शंकर जी के साथ इनका विवाह होता है नित्य, ये बात समझाएं। उससे पहले शास्त्र के प्रमाण की बात आपको बताते हैं। यहाँ छोटा सा एक गोपाल का चित्र है, और गोपाल के लिए कृष्ण के लिए एक कहावत सदा है, माखन चोर, माखन चुराया करते थे। किसका माखन चुराते थे, आपके घर में कभी माखन चुराने आया, आपके घर में माखन है क्या, माखन बनाना आता है मेरी माँ, माखन बनाना नहीं आता है, बाजार से खरीदते वो नहीं खाता कृष्ण। कृष्ण तो हाँ बोलिए, उसको छोड़ो, वो फॉर्मेलिटी बाद में करेंगे, रवि जी पंडित जी बाद में कर लेते हैं, अब इस महात्मा इसको बात को चलने दो। तो मक्खन, माखन गाय घर में होनी चाहिए, उसके दूध से माखन निकले और फिर भगवान को कहो कि आप आके ले जाओ, तब आके खाते हैं, ऐसे माखन के भूखे नहीं है। तो माखन चोर, किसका माखन चुराया, केवल गोपियों का, और किसी का नहीं चुराया आज तक, और गोकुल में चुराया, मथुरा में भी नहीं चुराया, द्वारका में भी नहीं चुराया, जहां प्रेमी भक्त होते हैं वहां भगवान घर में आते हैं। माखन क्या, उनके मन को चुराने आते थे, उसके दिल को चुराने आते थे। तो माखन चोर कृष्ण का एक नाम है। एक बार गोपियों ने बार बार जाके शिकायत करती थी, यशोदा आपका लाला हमारे घर माखन खाने आता है, बोला पकड़ के लाके दिखाओ। एक दिन गोपियों ने कहा ठीक है, अगली बार हमारे घर में कभी माखन आया खाने हम पकड़ के लाएंगे। गोपियों ने क्या कर दिया, पहले तो पनघट के ऊपर जहां पानी भरती थी वहां कृष्ण को बुलाया, बड़ा अच्छा मक्खन हमारे घर में आना लाला। और बुलाने के बाद क्या किया, दरवाजे के ऊपर ऐसे घंटी लगा दी, घंटी खिड़की में घंटी लगा दी कि अंदर जाएगा घंटी बजेगी तो हम जाके पकड़ लेंगे। श्री कृष्ण आया अपने साखों सखाओं के साथ, मधुमंगल को साथ लाया, स्तोभ कृष्ण साथ आया, अरे घंटी लगाई है, गोपियां बड़ी होशियार हो गई हैं, गोपियां हमको पकड़ना चाहती है। कृष्ण त्रिलोकीनाथ भगवान साक्षात परम ब्रह्म कहते हैं घंटी कोई नहीं बजना चाहिए, हमारा आदेश है, और जिसके आदेश से सूर्य रोज उगता है, जिसके आदेश से चंद्रमा अपने समय पे उगता है, हवा बहती है, उसके आदेश से घंटी बजी नहीं, सब कूद के अंदर चले गए। देखा घंटी ऊपर सिक्के में माखन पे घंटी बांधी हुई है, घंटी नहीं बजी। कृष्ण ने माखन उतारा, एक भक्त को दिया खाओ, दूसरा तुम खाओ, नहीं खाता है, बंदर को दिया, बंदर भी ऐसे मुंह किया। तो कृष्ण ने बोला मैं चखूं माखन अच्छा है कि नहीं। जैसे कृष्ण ने माखन की उंगली अपने मुख में डाली सब घंटियां बजी, हाँ सब घंटियां बज गई, अब तुमको बोला था मत बजना। अब घंटियां कहती है महाराज आपने शास्त्र में लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे, अब तो आपको भोग लग रहा है तो हमको बजना पड़ेगा, हम शास्त्र की बात माने कि आपकी बात माने? तो शास्त्र की बात माननी पड़ेगी। तो शास्त्र की बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आइए हम ये देवी की महिमा के कुछ श्लोक श्रीमद् भागवत से पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में बैठे हुए हैं और गोलोक धाम में बैठे हुए यहाँ भागवत के दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में लिखा है, भगवान ने क्या किया, पहले क्या किया, यहां शब्द ये लिखा है, देख लीजिए, योग मायाम समादेशात। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, योग माया भगवान के सामने प्रकट हुई और योग माया को भगवान ने क्या कहा, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोपी भीर अलंकृता। अब आप योग माया वृंदावन में जाओ, गोकुल में जाओ, क्या करूं मैं वहां जाकर? तब कहते हैं वहां आप दो काम करने हैं। क्या दो काम करने हैं? बोला पहला काम तो ये करना है कि जो मथुरा में देवकी के इस वक्त उधर में बलराम जी आए हैं उसको वहां से खींच कर ले जाओ और जाकर उसकी असली मां है रोहिणी उसके उधर के अंदर स्थापित करो पेट में। ये देवी को आदेश दिया भगवान ने कि पहला काम क्या करो, देवकी के सातवें बच्चे को बलराम जी को आप देवकी के गर्भ से निकालकर और रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित करो। बहुत बड़ा मुश्किल काम है, देवी ने कहा ऐसे मुश्किल है? बोला भद्रे आप ये कर सकती हो, आप ये कीजिए। और फिर क्या कहा, दूसरा काम क्या करना है? बोला दूसरा ये काम करना है कि मैं यशोदा का बेटा बन के आ रहा हूं, आप मेरी छोटी बहन बन के आना। दूसरा ये कहा कि आप मेरी अनुजा बनना, मेरी छोटी बहन बनना। और यहां से तो आपको मालूम है कि यशोदा के घर में जो छोटी बहन के रूप में देवी प्रकट हुई, वसुदेव उसको लाया और कंस ने खींच के उसको पत्थर पे मारा, कंस के हाथ से निकली, आठ भुजाएं धारण की और ऊपर से कहा कंस तेरे को मारने वाला पहले ही पैदा हो गया है। ये देवी का प्रकट्य है, ये देवी अष्ट भुजाओं में जब ऊपर गई, इसके बाद ये काम अभी हुआ नहीं है, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं देवी को, क्या कह रहे हैं सुन लीजिए, कि ये दो काम जब आप करोगी ना मां देव माया, जब ये दो काम आप कर लोगी तो फिर आशीर्वाद दिया भगवान ने। श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद देते हैं भागवत में, देख लीजिए, अरचष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम, सारे मानव तेरी पूजा करेंगे देवी। अब भगवान कहते ये दो काम करोगी ना, बलराम जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करोगी और मेरी छोटी बहन बनकर यशोदा के घर में जन्म लोगी, तो फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि सारे लोग आपकी पूजा करेंगे। तो देवी ने बोला क्यों पूजा करेंगे? तब भगवान कहते हैं सर्व काम वरेश्वरिं, क्योंकि आप सबकी इच्छाएं पूरी करोगी, आप सबकी इच्छाएं पूरी करोगी इसलिए सब लोग आपकी पूजा करेंगे। अर्च्य, अर्चन का मतलब पूजा करना। अर्चा किसको कहते हैं? ये जो सामने मूर्ति का रूप है इसको अर्चा बोलते हैं, अर्चा का मतलब मूर्ति, अर्च्य विग्रह बोलते हैं। भगवान हमारे इन आंखों से साक्षात भगवान को नहीं देख सकते हैं, तो इन आंखों से तो हम पत्थर को मिट्टी को लोहे को इसको देख सकते हैं, तो भगवान उस रूप में हमारे को दर्शन देने के लिए प्रकट होकर होते हैं, इसको अर्च्य बोलते हैं। तो पूजा क्यों करेंगे आपके लोग? तो भगवान कहते हैं क्योंकि तुम सबकी इच्छा पूरी करोगी, सर्व काम वरेश्वरिम, तुम सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। और कैसे पूजा करेंगे पूछा तो बोला धूप करेंगे, अगरबत्ती, उपहार आपको भेंट चढ़ाएंगे, फल आदि, बलि भी ही और बलि भी देंगे, सर्व काम वर प्रदान आप सबकी इच्छाओं को पूरा करोगी। और ये कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अब और एक बात बताते हैं, क्या कहते हैं, नामाध्यानी कुर्वान्ति। अब आपके नाम कैसे होंगे बता रहे हैं, आपको दुनिया में किस नाम से लोग पूजेंगे और स्थान कहां कहां पे आपको पूजेंगे। देखिए ये सुन लीजिए, मॉरिशस का नाम नहीं है इसमें, आप सुन लीजिए, भगवान भागवत में कहते हैं आपका नाम होगा दुर्गेति, आपका नाम दुर्गा होगा। फिर कहते हैं भद्रकालीति, आपका नाम भद्रकाली होगा। और फिर कहते हैं विद्या वैष्णवी, और फिर कहते हैं कामुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यकेती च, माया नारायणी, ईशानी, शरदय अंबिके। ये भगवान नाम बता रहे हैं देवी के। बोला कहां पूजा होगी, अगरबत्ती सुन, लॉर्ड कृष्ण ब्लेस्ड माया देवी बाय सेइंग इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पीपल विल गिव यू डिफरेंट नेम्स सच एज दुर्गा, भद्रकाली, विद्या वैष्णवी, कमुदा, चांडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया नारायणी, ईशानी, श्रद्धा और अंबिका। ये देवी के नाम भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से उच्चारण किए। बोला इन नामों से लोग अपने इच्छा पूरी करने के लिए आपकी पूजा करेंगे। और फिर श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं कि ऐसे आपको भारतवर्ष में देवी के बड़े अद्भुत मंदिर मिलेंगे। कहाँ कहाँ मंदिर मिलेंगे ये सब, बंबई में मुंबा देवी बोलते हैं, कलकत्ते में काली बोलते हैं, और पूजा होती है उधर दुर्गा देवी की, और वैष्णो देवी का बहुत बड़ा पीठ 52 जगहों पे 52। जब सती जब दक्ष के यज्ञ में गई थी शंकर की पत्नी, और जब अपने आप को वहां भस्म कर दिया अपनी योग अग्नि से, तो 52 जगहों पे उनके अंग के टुकड़े गिरे। उन 52 जगहों पे देवी का पीठ है या देवी की पूजा होती है। 52 places को कहते हैं देवी के पीठ या स्थान। तो जो भगवान का अवतार हुआ उसके साथ साथ देवी का भी प्रकट्य हुआ। तो इस दुनिया के अंदर कुछ लोग देवी के मानने वाले हुए, उनको शक्त बोलते हैं, शक्ति की उपासना करने वाले, और कुछ भगवान के उपासक हुए उनको वैष्णवा बोलते हैं। तो कुछ शक्ति के उपासक हुए, कुछ भगवान विष्णु के उपासक हुए। तो ये शक्ति क्या है, ये भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्तियां 3 है। एक भगवान की शक्ति हम हैं, सब लोग जो बैठे हैं, हम कहा, हम क्या है, भगवान की शक्ति है। ये कौन सी शक्ति है भगवान की, इसको बोलते हैं मार्जिनल एनर्जी, तटस्थ शक्ति। किनारे के ऊपर जैसे समुद्र आपका है, एक समुद्र अंदर और एक बाहर सूखा, बीच में किनारा, किनारे के ऊपर खड़े हुए हम सब जीव आत्माएं भगवान की शक्ति है। एक बाहरंग शक्ति है भगवान की, जो इस भौतिक जगत को चलाती है, उसका रूप है दुर्गा। एक अंतरंग शक्ति भगवान की है, जो भगवान के धाम में निवास करती है, उसका नाम है राधिका। वो अंतरंग शक्ति कहलाती है अहलादिनी शक्ति। ये बाहरंग शक्ति है और हम अंतरंग, हम बीच की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, किनारे के ऊपर खड़े हुए हैं। अब हमको क्या करना चाहिए, एक बात और भी हाथ जोड़ के आपको विनती करता हूं, मां दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करते हुए, और आप सब बुद्धिमान प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाते हैं। जैसे ये मॉरिशस का बहुत सुंदर सा एक देश है, तो इस देश के अंदर बड़े सुंदर स्कूल हैं, पढ़ने के लिए बच्चों के लिए कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, लेकिन जेल भी है, हैं कि नहीं है? है तो अब ये एक बात आपको बताते हैं कि असल में ये जो भौतिक जगत है जिसमें हम पैदा हुए हैं, इसको भगवान ने जेल बोला है कि ये जेल है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से नहीं आते। आप अपनी मर्जी से आए हो क्या इस दुनिया में? आपको किसी ने पूछा था कि कहां आपका जन्म होना है? किसी ने पूछा था किसके घर में होना था? ये पूछा था? नहीं पूछा था ना। आप अपनी मर्जी से यहां नहीं आए हैं ना? नहीं आए हैं ना, पक्का ये बात समझ रहे हैं ना मेरी? कोई अपनी मर्जी से इस दुनिया में मर्जी से नहीं आया है। अपनी इच्छा से कोई भी जेल में नहीं जाता। जाता है कोई जेल में अपनी इच्छा से? मैं बड़ा अच्छा पढ़ रहा था, इस आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो आप क्या बोलेंगे? वापस आना, ये बोलेंगे ना, कम अगेन। लेकिन मैं पढ़ रहा था, एक भक्त जेल में गया था, जब जेल से छूटा तो सब लोगों ने पता है क्या कहा? वापस जाऊं मत आना। जेल में यही कहते हैं, वापस मत आना, ये ठीक है कि नहीं? कौन कहेगा वापस जेल में आना? तो आपको मालूम है सनातन धर्म में, आपको मालूम है हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं यहां से भगवान के घर जाओ, वापस इस दुनिया में नहीं आना, जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना। ये तो समझा, सुना है ना कि नहीं सुना है? जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये चार चीजों हैं, चार चीजें जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। मरना, किसी का मरने के इलाज है किसी के पास? इस दुनिया में कोई आदमी है जो आज तक नहीं मरा है जन्म लेकर? है कोई ऐसा आदमी दुनिया में? नहीं है ना। बीमारी, कोई ना कोई बीमारी आती रहेगी और किसी न किसी को बीमार होना ही पड़ेगा इस दुनिया में। कोई ऐसा आदमी है कहे कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ? बुढ़ापा, ओल्ड एज, बचेगा कोई? सबको आती है कि नहीं आती है? इनका इलाज है किसी के पास? नहीं है। और चौथा बोलते हैं जन्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इसका इलाज नहीं है। और इस संसार का नाम ही मृत्यु संसार है, और इसको जेल बोलते हैं, और इसमें हम अपने कर्मों के कारण आए हैं। लेकिन इस जेल की मालिक कौन है? दुर्गा, ये मां मालिक है इस जेल की। इसलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हमको यहां से निकालो, हमको वापस अपने घर जाने दो। ये इसलिए प्रार्थना करते, इसलिए प्रार्थना नहीं करते कि यहीं सुख दो हमको, भाई जेल में हमारे को अच्छा कमरा दो, जेल के कमरे में हमको एसी लगा के दे दो, जेल के कमरे में हमारे को बहुत सुंदर भोजन का प्रबंध कर दो। ये बुद्धिमानी है क्या? हाँ, एक आदमी जेल में हो और जेल सुपरिटेंडेंट को बोले कि मेरे को जेल के अंदर एसी लगा के दो, ये अच्छा है? ये बोले कि जेल से बाहर निकाल दो, ये अच्छा है? हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहिए? जेल से बाहर निकाल दो, ऐसे बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमको किसी ने शिक्षा दी नहीं है, इसलिए जाते हैं, माँ माँ हमारा घर अच्छा बना देना, हमारा दुकान अच्छा चलने लगे, पैसा ज्यादा कमाना, इसका मतलब हमारे को जेल में सुविधाएं दो, जेल से बाहर निकालो, ये हम नहीं बोलते। आपको एक और कथा बता दूं, ये दुर्गा माता जी का शंकर बाबा है ना, पतिदेव रहता है कैलाश में पेड़ के नीचे। एक बार दुर्गा जी ने कहा कि घर तो बनाओ, सभी आपको प्रार्थना करते हैं हमारा घर बने, अपना अपना तो घर है नहीं, सबका घर बनाते, अपना घर कब बनाएंगे? शंकर जी, दुर्गा का अपना घर नहीं है, वो तो पेड़ के नीचे कैलाश में रहते हैं। अच्छा, शंकर जी ने बोला आपकी इच्छा। तो माँ दुर्गा तो शक्तिशाली है, बहुत बड़ा सुंदर महल बन गया, बड़ा घर बन गया। बोला अब घर के अंदर प्रवेश करना है तो पूजा करानी पड़ेगी, बुलाइए पंडित जी को। हाँ, भृगु ऋषि आ गया, अंगिरा ऋषि, बहुत से ऋषि आए, पूजा किया तो ऋषि बोलते हैं महाराज दक्षिणा दो। अब शंकर जी बोला हमारे पास बैंक वैंक तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, चेक है, दक्षिणा कहां से देंगे? बोला क्या करें? बोला ये घर आपको दक्षिणा में दे दे। वो घर फिर दक्षिणा में दे दिया और जाके पेड़ के नीचे रहे। अभी तक बाबा पेड़ के नीचे बैठे, कभी घर बनाया नहीं। जिसने खुद अपना घर बनाया नहीं, उसको हम कहते हैं हमारा घर बना दो, वो हंसता है, बोलता क्यों फंसना चाहते हो? बोलो कि जेल से निकाल दो, हमको संसार के बंधन से मुक्त करो, ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये बुद्धिमानी है। ये हम आपको यहां आज संदेश देना चाहते हैं कि यहां आओ तो मां को कहो कि हम कैसे भी इस दुनिया में फंस गए हैं, ये कोई अच्छी जगह रहने की नहीं है, यहां हर आदमी दुखी होता है, ये दुखमय संसार है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखमय है और सदा रहने वाला भी नहीं है। इसलिए यहां से निकल कैसे जाए, ये जो पूछता है वो बुद्धिमान है। ये मां को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमको अभिबंधन से मुक्त करा दो, जहां हमारा असली घर है वहां मजा के हम सुख भोगे। और तब मां खुश होकर कहेगी, मैं आपको बताती हूं, और गोपियों ने कात्यायनी देवी की उपासना की थी, यही देवी है कात्यायनी देवी, और सारी गोपियां एक महीना उपासना की। कात्यायनी देवी ने पूछा क्या चाहिए, बोला भगवान श्री कृष्ण चाहिए। हाँ, बड़ी खुश हो गई देवी, बोला बहुत अच्छा, पहले कोई अच्छा आशीर्वाद किसी ने मांगा है, भगवान को मांगा है, संसार को भुला दिया है, तो ऐसे पूजा करना चाहिए। लेकिन मांगना क्या चाहिए, ये बुद्धिमानी होनी चाहिए। मांगने में गलती करने से दुनिया में हम फंसे रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए आइए उत्सव मनाइए, समझिए कौन किसकी पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये दो प्रश्न अपने आप से पूछ लो। लेकिन प्रायः हम इसको उत्सव मानते हैं, सब साथ जाते हैं, अगरबत्ती लेते हैं, फूल चढ़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अच्छी बात है, इससे हम धार्मिक होते हैं। लेकिन धार्मिक से आध्यात्मिक होना है, आध्यात्मिक होना है का मतलब आत्मा के बारे में शिक्षा ग्रहण करनी है, शरीर से थोड़ा ऊपर उठना है। और ये शिक्षा माँ दुर्गा को भगवान शंकर जी दिया करते हैं। आपको मालूम है शंकर जी के भी गले में नौजवान स्त्रियों के सर की माला पहनी हुई, मालूम है? नारद जी एक बार आके पार्वती जी को बोलता है कि भोलेनाथ सुंदर स्त्रियों के गले में माला पहनते है, कौन है? आप बोलती हैं आपसे प्रेम करते हो, कितने सारे स्त्रियों की मालाएं गले में पड़ी। लेकिन बात एक सुन लो, आप उनसे पूछना वो बताएंगे नहीं, और आप कहना मुझे चाहे बताओ, बिल्कुल मैं सुनूंगी, छोड़ूंगी नहीं, और जिद करना पक्का। अब पार्वती ने कह दिया शंकर जी को, ये मालाएं सुंदर स्त्रियों की आप गले में, बोला इसको भूल जाओ, नहीं मैं जरूर पूछूंगी। शंकर ने कहा आपको नारद मिला था क्या? ये था काम तो नारद ही करता है जो समस्या में डाल देता है। अच्छा, तो शंकर जी ने कहा अगर आप मेरे से पूछती हैं तो मैं आपको बताता हूं, इससे पहले हर बार आप मेरी पत्नी बनी है, और जब आपका शरीर समाप्त हुआ तो मैंने वो अपने गले में माला करी, सब आपके, ये आपके सारे सर है। भरत जी बोलता क्या मेरे को फिर शरीर छोड़ना पड़ता है? अब मेरे को अमर बनाओ, मेरे को अब अमर बना दो, अब मेरा शरीर आपके गले में नहीं, मैं साक्षात आपके गले में बंधी रहूंगी। अच्छा, शंकर जी ने कहा चलो फिर अमरनाथ में चले जाते हैं ना, अमरनाथ यात्रा करने। भारत में एक बहुत बड़ा मुश्किल तीर्थ है अमरनाथ, बर्फ का, जहां शिवलिंग बनता है और बर्फ के अंदर जाना पड़ता है, ठंडा इतना होता है कि बहुत से लोग बेचारे वहां तपस्या करनी पड़ती है। अमरनाथ सुना है नाम? अब अमरनाथ में ले गए भोलेनाथ पार्वती मां को, बोला ये अमरनाथ है मां, मैं आपको यहां एक कथा बताऊंगा, उस कथा को सुनने के बाद आप अमर हो जाओगी। लेकिन पहले भगवान शंकर ने नृत्य किया, कौन सा नृत्य किया? तांडव नृत्य किया, जो प्रलय के समय करते हैं, और ऐसा नृत्य किया कि कोई प्राणी वहां रहे ना। क्यों नृत्य ऐसा किया? बोला यहां ये कथा कोई सुनने नहीं चाहे, किसी और को सुनना नहीं चाहिए, नहीं तो अमर बन जाएगा, अमर बन जाएगा तो भगवान का नेम खराब हो जाएगा, या तो सब मृत्यु संसार में मरने को आते हैं। अच्छा, तो सभी प्रायः भाग गए। शंकर जी ने कथा सुनाना शुरू किया पार्वती जी को, कौन सी कथा सुनाई? श्रीमद् भागवत की कथा। सुनाते सुनाते पार्वती को तो आनंद में समाधि लग गई, उसको हम समाधि कहते हैं, और हम लोग इस दुनिया में कथा सुनते सुनते सो जाते हैं। कथा में नींद सबको प्रेम से आती है, तो मां को समाधि हो गई। उधर एक छोटा सा एग पड़ा था पैरट का, वो तो नहीं भाग सकता था, और वो कथा के बीच में उसमें से छोटा तोता बन गया, पैरट पैरट। अब पैरट शंकर जी कथा बोलते हैं, उसके बाद ये हुआ आ, वो तोता बोलता है आ, दो चार पांच बार बोला पार्वती आप हाँ हाँ बोलती हैं, अच्छी बात है, पार्वती तो समाधि में, तो ये हाँ कौन बोलता है? अरे तोता बोल रहा है, इसका मतलब ये अमर हो गया। भोलेनाथ को बहुत क्रोध आया, त्रिशूल उठा के तोते के पीछे भागे। वही तोता सुखदेव गोस्वामी होके भागवत सुनाया परीक्षित महाराज को, अमर हो गया। और वहां पार्वती जी ये कथा सुनकर अमर हो गई। अब पार्वती अमर है, उसकी पूजा का विधान श्रीमद् भागवत से आपको सुनाया। हमने एक ही केवल आपको प्रार्थना की है, जेल से निकलने की प्रार्थना करो, जेल के अंदर सुख सुविधा मांगकर इसमें बार बार बंधे रहने की प्रार्थना करना ज्यादा बुद्धिमानी नहीं है। इसको भगवत गीता में कहते हैं अल्प मेध साम, अल्प मतलब कम, मेध साम मतलब बुद्धि, कम बुद्धि वाले लोग जेल के अंदर सुख चाहते हैं और बुद्धिमान लोग जेल से निकलना चाहते हैं। अब आपकी जैसी इच्छा। धन्यवाद करते हैं श्रीमान रवि जी महाराज का, जिन्होंने हमको आपकी सेवा करने का अवसर दिया, और माँ दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करते हैं आप सब आए हो, आपके हृदय में जेल से निकलने की कामना उत्पन्न हो और भगवान के चरणों में आपकी शुद्ध भक्ति हो, ऐसी हम आपको प्रार्थना करते हैं। अब जैसे प्रोग्राम आपका है वैसे कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा मियोसी बाकू। एग्जैक्टली आधा घंटा एग्जैक्टली आई डिड इट फॉर नाउ यू डू कीर्तन समथिंग। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।